आदरणीय डॉक्टर हुकुम चंद जी भारल के समयसार गाथा 23, 24, 25 एवं 26 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए और भूचा चकासे चित्त भावाय भावाय सर्वभावं
समय सार परमागम है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसमें गाथा नंबर 23, 24, 25 में चल रही है उसकी टीका। ये जो उत्कलपन ने टीका पढ़ी थी उसके बाद में वो टीका का रूप स्पष्ट नहीं होता था, इसलिए कोष्टक में लिखा है। कोष्टक देखें, टीका के 5-6 लाइन के बाद पूरी टीका पढ़ेंगे तो फिर आपको घबराहट होगी, इसलिए कोष्टक देखें, है ना, 5-6 लाइन के बाद। जैसे इस फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, इस फटिक का निज श्वेत निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। ये जो ऊपर का 6 लाइन है ना, उसका स्पष्टीकरण एक कोष्टक में किया है, क्योंकि वो संस्कृत से सीधा हिंदी अनुवाद किया ना तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, हैं? इसलिए किया है। ये जो समय सारे अनुशीलन में लिख रहा हूँ उसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि टेढ़ को सीधा कर दूं। कई जगह सफलता मिलती है और कई जगह नहीं मिलती है। जहां नहीं मिलती है वहां पर मैं ऐसे ही का ऐसा रख देता हूं इसमें से, और जहां मिलती है वहां उसे सीधा करने, क्योंकि ख्याल में आ जाए ना, तो संस्कृत टीका से वैसे पंक्ति की पंक्ति करते जाओ तो संस्कृत की प्रकृति अलग होती है और हिंदी की प्रकृति अलग है, तो जो प्रकृति अलग होने से वो अनुवाद सही नहीं बैठता। आपको मैं आपको बताऊं, इसे संस्कृत में तो हम गच्छाम्यहम, ये सबसे सुंदर संस्कृत मानी जाती है। अहम गच्छामि ये कोई मजे वाली बात नहीं है। अंग्रेजी में तो नियम है आई एम गोइंग, आई गो, जो भी है ना, सीधा पहले कर्ता के बाद क्रिया आ जाएगी, और फिर कहाँ जा रहा हूं वो बाद में बताएंगे, किसके साथ जा रहा हूं ये सब बातें बाद में। और हिंदी में ये नियम है कि पहले कर्ता और बीच में सब कूड़ा करकट भर दो और अंत में क्रिया लगाओ, कि मैं कोमल चंद जी के साथ बम्बई मेल से मंगलवार को बम्बई जा रहा हूं। अंग्रेजी में आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं कोमल चंद जी के साथ बम्बई को मंगलवार को, ये अंग्रेजी की प्रकृति है, समझे ना। अब अपन को ऐसे ही कैसा अनुवाद करेंगे तो हिंदी में कैसा लगेगा फिर, यानी अंग्रेजी का नियम अपनी भाषा के कंस्ट्रक्शन का अलग है और हिंदी का अलग है, बिल्कुल उल्टा है। और संस्कृत का कैसा है पूनम जी, कि वो तुम पहले भी लगा दो, पीछे भी लगा दो, बीच में भी लगा दो, चाहे जहां लगा दो, चाहे जिसको चाहे जहां लगा दो, इतनी स्वतंत्रता है संस्कृत में, लोच है, इसलिए बोलते हैं उस भाषा में लोच है। अगर तो हमको कविता बनानी है तो यदि हम ऐसे नियम में बंधे होंगे तो हम वो कविता का छंद नहीं बैठेगा, हम चाय जो को चाय जहां लगा सकते हैं क्यों प्रिंसा साहब, तो उसमें हम अच्छा लगा सकते हैं, हम गच्छाम ही कहो तो भी चलेगा, गच्छाम में हम कहो तो भी चलेगा। तो भाई ये आप कह दो चाय जैसा लगा दो, तो उस चाय जैसा लगाने का भी तो कोई नियम होगा, कि तुम चाहो कैसा, इसका भी तो कोई नियम होगा कि हाँ है नियम। कि भाषा में सुंदरता आवे, शब्द बहुत घने घने हो, जहां तक संभव हो एक ही शब्द में काम चल जाए तो दो शब्द नहीं बोलने पड़े। तो देखिए अहम गच्छामी, ये दो शब्द हो गए अहम और गच्छा, तो कहते उलट दो गच्छामी अहम, ऐसे एक शब्द थोड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन संधि हो जाएगी, मी की ई और अहम का आ मिलके या हो जाएंगे, प्रगच्छाम म्यहम ये हो जाएगा तो सुंदर एक शब्द हो गया, सुंदर लगता है गच्छाम म्यहम सुंदर लगता है। तो ऐसे नहीं चाहे जैसा नहीं बदलो, वो बदलने से कुछ भाषा में सौंदर्य बढ़ता हो, शब्दों में एकता आती हो, क्योंकि जितनी दूर दूर रखोगे तो उसमें उतने बोलने में गैप देना पड़ेगा, तो कम समय लगे ऐसा करना चाहिए। इसलिए संस्कृत भाषा बहुत बढ़िया है, उसमें अर्थ को ग्रहण करने की बहुत अधिक शक्ति है। इसे काव्य की भाषा में अर्थ गौरव कहते हैं। अर्थ गौरव का मतलब होता है कि कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता, ज्यादा संस्कृत में। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम्, दंडिना पद लालत्वम माघे संति त्रयो गुणा। क्या कि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, उपमा अलंकार के देने में कालिदास का क का जोर नहीं है, इसलिए उसको दीप शिखा कालिदास कहा जाता है। उन्होंने एक दीप शिखा नाम की उपमा दी है, उसको आज तक के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उपमा माना गया है। आदमी जी अब ये क्या है दीप शिखा, कालिदास का नाम पड़ गया दीप शिखा कालिदास। जी सुना नहीं होगा कभी, हमारे विद्यार्थियों को तुम बताते रहते हैं। दीप शिखा कालिदास का अर्थ होता है कि उन्होंने राम की दादी का वर्णन किया, राम की दादी माने दशरथ की माँ माने अज की पत्नी, समझ में आया कि नहीं है? तो उसको दीप शिखा की उदाहरण दिया। वो जा रही थी तो जैसे अंधेरी रात्र में दीपक की जो शिखा है वो हो गए तो कैसी अलग दिखाई देती है, ऐसे ही सबके बीच में मान सारी महिलाएं तो अंधेरी रात जैसी हैं और उसके बीच में खड़ी हुई इंदुमती, इंदुमती नाम है ना, क्यों दीपक की शिखा जैसी अलग दिखाई देती है, दीप के शिखा के समान जा रही थी। भीड़ के अंदर में कैसे जा रही थी, जैसे दीपक की शिखा जा रही हो। तो गजब हो गया, गजब हो गया। और दीप शिखा कर दिया, आपको तो कुछ लगा ही नहीं होगा क्या हो गया इसमें, इसने हो क्या गया है? और तुमको आत्मा के राग के प्रदेश बनने, हाँ गजब से गजब से गजब से। अरे साहित्य के रसियों को उसमें गजब लगता है, अध्यात्म के रसियों को इसमें गजब। आत्मा के प्रदेश राग के प्रदेश भिन्न है तो उछल क्यों रहा है, होंगे हमें क्या तकलीफ हो जाते, नहीं इकट्ठे इकट्ठे होंगे। तो उसका जो उर्वा पर संबंध होता है ना, तब रस परिपात होता है। तो कालिदास की उपमा भारवी कवि का अर्थ गौरव, अर्थ गौरव का मतलब होता है थोड़े में अधिक कहने की ताकत। उसके छोटे छोटे श्लोक और बातें बड़ी बड़ी, बहुत बड़ा भाव उसमें भरा हुआ। और दंडिना पद लालित्यम, एक दंडी नाम का कवि है, दस कुमार चरित्र जिसका है और कादम्बरी वगैरह है ना, दंडी की है ना कादम्बरी, पद लालित्य गद्य में लिखा, एक शब्द कभी कभी दो पेज में खत्म होता है, एक वाक्य नहीं। जो मैं बोला ना हम गच्छामी की जगह हमने गच्छामी हम कर दिया ना, ऐसे शब्दों को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के कहीं कोमा फुल स्टॉप भी नहीं लगे, बिल्कुल संधि और समास अलंकार और वो सब करते करते दस दस लेन आठ आठ लेन तीन तीन तत्काल लेन के बिना तो कोई शब्द ही नहीं होगा। क्रियाकर्ता सब मिले हुए, दंडिना पद लालित्यम तो पद की ललित लालित्य दंडी का, और माघे संति त्रियोगुणा, और माघ में माघ नाम का कवि है जिसने शिशुपाल नाम का महाकाव्य लिखा, उसमें तीनों गुण है ऐसा कहा जाता है, ख्याल में है ना। तो उसकी वजह से संस्कृत भाषा का जो लालित्य है और वो उसमें जो बातें वो ऐसी होती हैं। अब हिंदी में यदि वैसी का वैसा अनुवाद करेंगे तो हिंदी बहुत टेढ़ी हो जाती है, क्यों? इसलिए वास्तव में अनुवाद करने की सच्ची पद्धति ये है कि पहले उसे पूरा एब्जॉर्ब करे, उसकी नस नस को समझे, फिर हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार उसको लिखे आदमी। तो ये मैं करता हूं। एक आपको कुछ नहीं है तो लिखा हुआ है, इसमें लिख दिया पंडित जी ने, लेकिन सबसे ज्यादा समय मुझे उसमें लगता है। कभी कभी एक एक गाथा के में तीन तीन दिन लगते हैं। सिर्फ जो लिखा लिखाया अर्थ है ना, जतन जी छावड़ा का उसने छपा छपाया, उसको ही लिखने में, और नहीं तो आलस करो ना तो लिख दोगे इसका अर्थ जयचंद जी छावड़ा ने आपने एक एक किया है, और नीचे फटाफट टाइप वाले से कह दोगे तू टाइप कर देना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब अमेरिका से मेरे पास पत्र गुजराती अनुवाद किया ना रजनी गोसलिया ने, तो उसने लिखा कि साहब मैं तो चक्कर में पड़ गया कि मैंने तो आपके हिसाब से अनुवाद किया और फिर मैंने मिलाया गुजराती में, वो हिम्मत भाई का मिला, क्या करूं ये करूं ये करूं ये करूं, लिख के बेचारे अनुवाद किया और उसे काटा। अब उसको इतनी रामायण थोड़ी मालूम है कि ये बोल मैंने इसे सीधा किया है और सरल किया है क्या। अब पर मैं इस हिसाब से इन गाथाओं को देखना कि जिसमें मैंने उसे सीधा किया है उसका अर्थ, और इसको मूल मिला के पढ़ना एक दफे पादनी जी सब गाथाओं का 25 का, तो आपको ख्याल में आएगा कि इसमें क्या किया गया है। लेकिन जहां जरा भी अर्थ में बदलने का डर लगा तो वहां अपन ने हूबहू वैसे ही का वैसा रख दिया। सोनगढ़ वालों ने भी ये काम तो किया है, देखो ये लिखा ना कोष्ट, उन्होंने एक कोष्टक के तरीके से किया वो बात, एक कोष्टक में लिखा ना क्या लिखा अपन ने कोष्टक पढ़ा। मैंने इतनी बात आपको इस कोष्टक का अर्थ समझाने के लिए कही है कि जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता के कारण अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निज श्वेत निर्मल वैभव दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। ये ऊपर का सारांश है जो उतना पन्न भाषा की। अभी क्या है, एक स्फटिक नाम का मणि होता है, वो आप सब जानते होंगे, जो कांच ही जैसा होता है, लेकिन कांच में और उसमें क्या अंतर है ये आपको ख्याल में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा बताता हूं। कांच का एक इतना गोला हो, फिरोजाबाद में बना हो, कढ़ला हुआ बढ़िया, आपका टेबल पर रखने के लिए बनाते कि नहीं बनाते, और उसके नीचे अंदर एक गुलाब की पांखड़ी लगा दो, तमाल पुष्प लगा दो, जवा पुष्प लगा दो, तो क्या होगा कि वो गुलाब का फूल वैसे ही का वैसा दिखेगा जितना है उतना ही, जितने हिस्से में लगा है, नीचे काला दाग लगा दो तो वो उतना ही दिखेगा, और यदि स्फटिक मणि होगा तो वहां इतनी सी पांखड़ी लगी होगी तो सारा वो कांच का वो स्फटिक मणि का जो है वो गुलाब का फूल जैसा दिखेगा, तो सारा का सारा आप किसमें वो रिफ्लेक्शन का तरीका ये है, वो पारदर्शी नहीं है लेकिन उसकी किरणें चारों तरफ को फैलती हैं। तो पहले ऐसी अंगूठियां बनती थी स्फटिक मणि की, क्या अंगूठी में स्फटिक मणि है, अब उसके अंदर में पन्ने की डांक लगा दी तो आप ये नहीं समझते हैं स्फटिक है, आप समझेंगे ये पन्ने ही है। जरा सा वो मान लीजिए कि आपका 25 कैरेट का है और पन्ना आपने 1 कैरेट का लगाया तो भी 25 कैरेट का पन्ना है ऐसा दिखेगा सारी दुनिया को। हीरे की डांग लिखाई तो वो हीरा दिखेगा, आपने वो जो भी हमने ज्यादा जानता नहीं, माणिक की लगाई तो वो पूरा माणिक, मूंगा लगाया तो मूंगा, आप समझे जो रत्न दिखेगा वो दिखेगा। अब एक हमारे पास स्फटिक की अंगूठी है बड़ी अच्छी बढ़िया बड़ा, इतने बड़े बड़े हीरे पन्ने माणिक तो हरेक के पास होते नहीं है, और जरा जरा से होते हैं रोजीना उसमें लगा लगा कर, हीरे की अंगूठी माणिक की पन्ने की घड़ियों में लगा लेते हैं डायल अलग अलग, डायल 25 घड़ी 1 उनपे बदल बदल के पहन के आ जाते हैं ना क्यों साहब शौकियों के लिए, तो वो स्फटिक का स्वभाव है, पारदर्शक नहीं, ख्याल में आए ना। अब इससे समझो वो क्या कहते हैं कि इसलिए यदि उसमें हम 3-4 डांके लगा दें साथ में ही हरा पीला नीला काय में स्फटिक मणि में तो वो अनेक रंग का दिखेगा, विचित्र चितकबरा दिखेगा। तो ये कह रहे हैं कि लोग बाग उसे डांक लगा के पहनते हैं, उसे वैसे ही का वैसा क्यों नहीं पहनते संत भाई, क्योंकि उनको ये क्या पारदर्शक रूखा रूखा इसमें मजा नहीं आता आदमी जी, तो वो उसे रंग बिरंगा करके, तो वो रंग बिरंगा उन्हें अच्छा लगता, तब तो ऐसा करते हैं ना। यानी उसकी जो सफेदी नहीं, स्वच्छता, उसका रंग सफेद नहीं है, स्वच्छ है वास्तव में, तो एक तरह से वो रंग कलर लेस है। कलर लेस तो कोई पुर्गल परमाणु होता नहीं है, लेकिन जो कलर लगाओ वो कलर जिस पर चढ़ जाए उसे बोलते कलर लेस, है ना। वो ऐसा उसका स्वभाव जिन लोगों को पसंद नहीं है, तो वे उसे अलग अलग डांक लगाकर उपयोग करते हैं। कपड़ों में भी ऐसा है, तो एक आदमी का नेचर एकदम सफेद चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए उसमें, कोई कलर फलर नहीं चाहिए, और एक आदमी को नीला चाहिए, पीला चाहिए, बैंगनी, तो आज ऐसा कल ऐसा परसों ऐसा, क्यों अलग अलग कलर के चाहिए, आज का कुर्ता इस कलर का, कल का कुर्ता उस कलर का, क्यों सैन सुमारी। फिर इतने में संतोष नहीं होता है माताओं बहनों को खासकर, तो एक ही साड़ी में 25 कलर चाहिए, नीचे अलग, ऊपर अलग, बगल में अलग, इधर अलग, इधर अलग, पैरों के पास अलग, माथे पे अलग, क्यों। अरे भाई ये कल पहले ना दूसरे कलर की, आज ये कल, कल दूसरे कलर की, लेकिन तो सारे रंग एक साथ ही चाहिए, क्यों। तो लोक में भी जो कलर लेस पहनते हैं उनको थोड़ा क्या माना जाता है, अभी क्या शब्द का शब्द सुसक्षित अथवा गंभीर, क्या जो भी आपको नाम देना हो, समझ लीजिए जो माना जाता है, आप समझते तो सब है ना, कोई नाम देने से क्या, क्यों आप अगर रंगीन फंगीन हो तो मणिचंद जी इधर रसिया आदमी है, और अभी एक ऐसी बुशर्ट पहन के आ जाए आप यहाँ 60 वर्ष के हो गए, क्यों इधर एक बड़ा लंगीन, इधर एक दबका, एक इधर, एक इधर एक टकर लगा हो तो क्या होगा, क्या वो ओवर रसिया बोलते कि नहीं बोलते, क्या आप आ रही है, हाँ जो वो नई उम्र का पहने तो नहीं कहेंगे, क्यों सेठी जी का पोता पहने तो नहीं कहेंगे, सेठी जी पहनेंगे तो कहेंगे, फर्क है जो नहीं, क्यों वो सेठी जी पोते को पहना के लाए अच्छा कंधे पे रख करके, तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है, उस पोते ने नहीं चुना है, वो शौक तो हमारा ही है, हम ही चुन के लाए हैं उसको रंग बिरंगा, क्यों प्रदीप जी, वो बेचारा बाजार गया था, लेकिन खुद पहने तो मजा नहीं है, उस पोते को पहना के अपना शौक पूरा करते हैं, हम पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्यों मनक भाई। तो ऐसे ही विचित्र वर्णमाला, जो ये शब्द है इसमें, विचित्र माने अनेक रंग की वर्णमाला के द्वारा स्फटिक मणि का जो स्वरूप विकृत हो गया है, इस सारा जगत उसको ही स्फटिक मणि मानता है, इसका नाम अज्ञान है। अरे उसको स्फटिक मणि मानता है यहां तक तो हम माफ कर दें, लेकिन अब उसको ऐसा ही स्फटिक अच्छा लगता है, यदि खाली स्फटिक लाए तो वो उसे स्फटिक ही नहीं माने, ये और परेशानी हो गई है। कई स्फटिक है, अरे जी खान के तुम्हारा, अरे बोलो कितना बढ़िया रंग बिरंगा, कितने कितने कलर, यानी ये जगत स्फटिक के स्वभाव को भूल ही गया है, विभाव में देखते देखते डांक लगे हुए स्पष्ट को, स्फटिक मणि को देखते देखते असली स्फटिक मणि क्या है उसके स्वाद को भूल ही गया है। दाल नमक ककड़ी में मिला मिलाकर खाते खाते नमक का असली स्वाद है, स्वाद किसी को पता ही नहीं है, असली का पता होता तो नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, नमक में सबसे बढ़िया स्वादों में सर्वश्रेष्ठ स्वाद किसका है, नमक का। बेटा नमक खाया होता अकेला तो कहते सबसे बड़ा स्वाद किसका है, ऐसा तू बोलता, लेकिन मिला मिला के खाया है इसलिए तेरे को नमक का स्वाद अच्छा लगता। यानी मिले हुए को देखते देखते, अनाधिकाल से मिला ही हुआ है ना, अभी कल्पना करो आप कि स्फटिक मणि को एक दिन भी हमने बिना डांक के नहीं देखा हो तो हमारी क्या हालत होगी, हम तो उसका वही स्वभाव मान लेंगे कि नहीं, और फिर यदि उसे निकाल के देखें तो हम उसे स्फटिक ही मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे अनादिकाल से देह के पुद्गल परमाणु राग द्वेष इन सब से विचित्र वर्णमालाओं से मिले हुए आत्मा रूपी स्फटिक को हमने देखा है, इसलिए इनसे रहित इस आत्मा की हमें कल्पना ही नहीं आती है। और जब हम कहते हैं तुम राग को निकाल दो, उससे रह, केवल ज्ञान से रह, अरे भैया अब क्या कर, अब आत्मा को थोड़ा बहुत बचने भी तो दोगे, सभी निकाल दोगी, वो समझता हम आत्मा निकाल दें। क्यों? क्योंकि इनसे रहित आत्मा उसने कभी देखा ही नहीं और अनादिकाल से अब तक हुआ ही नहीं। अब एक प्रॉब्लम और है अमृत भाई, क्या वो स्फटिक मणि को हम कहें कि ये बिल्कुल रंग बिरंगा स्फटिक मणि, ध्यान से सुनना, जरा बारीक पॉइंट है, क्या वो रंग बिरंगा स्फटिक मणि जो आज तक हमने नहीं देखा था, देखा ही नहीं है, फिर मैं ये कहेंगे देखो भाई साहब ये जो स्फटिक है आप सब अच्छी तरह देख लो, अब ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है ना दिलीचंद जी, ये रंग बिरंगा नहीं है, एकदम निर्मल सफेद स्वच्छ है। पंडित जी आज रात को नींद तो अच्छी आई थी कि नहीं? क्यों क्यों नींद की क्यों हो, क्योंकि अभी आंख में कुछ गड़बड़ होगी, साफ दिख रहा है ना सबको। ऐसे ही राजदेश वाला ही आत्मा अनादिकाल से देखा है, देह वाला ही आत्मा देखा है, शरीर वाला आत्मा देखा है, पर्याय वाला आत्मा देखा है, सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि देखे हैं, आत्मा तो कभी देखा ही नहीं है, तो उनसे कहते हैं देखो ये विचित्र वर्णमाला वाला जो आत्मा है ना, ये विचित्र वर्णमाला वाला नहीं है, जैसे इनसे रहित केवल ज्ञान स्वभावी स्वच्छ निर्मल ऐसा है। क्यों क्या बात है, सोनगढ़ जयपुर की हवा तो नहीं लग गई है तुझे, ये कैसी बात करता है, साफ तो दिख रहा है जैसा है, अब जैसा है वैसा तो माने नहीं, और ये कहता है ऐसा देखो इस गंदे कपड़े को साफ देखो, कैसे हो सकता, लेकिन इस स्फटिक मणि में तो एक सुविधा है कि ये लोग नहीं माने तो वो डांके निकाल निकाल कर और फिर बता सकते अब देख ले भैया अब क्या है, और फिर लगा के बता सकते हैं, फिर निकाल के बता सकते हैं, 10 दफे प्रयोग करके बता सकते हैं, तो उसे खातरी होने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व डांक निकाल दी, अब देख मिथ्यात्व के बिना ऐसा है, और मिथ्यात्व की लगा दी मिथ्यात्व सहित ऐसा है, राग की डांक निकाल दी राग रहित ऐसा है, और राग सहित ऐसा है, तो शरीर की डांक निकाल दी ऐसा है, कर सकते हो, न राग को पृथक किया जा सकता है, न शरीर को पृथक किया जा सकता है, न कर्म नो कर्म को पृथक किया जा सकता है, ख्याल में है ना, अब ये पृथक किया जा सकेगा नहीं, और दिखेगा ऐसा ही विचित्र वर्णमाला वाला, और तुझे मानना ये है कि ऐसा नहीं है वैसा है, क्यों ये ना बहुत कठिन काम। बरदाते जी ये जो अम्मा पीट रही है ना लड़के को धमाधम धमाधम धमाधम, बेचारे के गाल लाल हो गए हैं, 5 वर्ष का छोटा बच्चा ये पीट रही है ना एकदम, ये इस बच्चे को से द्वेष नहीं रखती है, तीव्र राग रखती है। दादा तेरे जैसे पंडित बहुत देखे, हमें देख रहा है क्या बुरी तरह पीटा है, सौतेली की मां होगी, अरे इसकी असली अम्मा है, राग है द्वेष नहीं है, ये राग है। अच्छा अच्छा राग है तो पीट क्यों नहीं है, कि राग है इसलिए तो पीट रही है, राग है इसलिए पीट रही है, क्यों दिलीचंद जी, क्यों कि दूसरे का होता तो गड्ढे में जाए मरे जिए पड़े चाहे ना पड़े, क्यों हमें क्या लेना देना, अपना बेटा है अभी नहीं पड़ेगा तो सारी जिंदगी कहीं चपरासी बना रहेगा, ऐसा ख्याल आकर सारी जिंदगी में दुखी नहीं हो इसलिए उसकी पिटाई कर रही है, ये राग का प्रदर्शन है, ये देश का प्रदर्शन नहीं है, ये बात गले उतारना जरा ज्यादा कठिन है क्या नहीं है, लेकिन लोग कहें तो समझ में आ जाती है, क्योंकि तो उसका अनुभव है ना हमको निरंतर, ये जो अभी पीट रही है ना वो रो रहा है। अब जब वो तो चुप हो जाएगा, अब रात भर ये रोएगी, क्योंकि जितनी चोट उसको लगी है उससे 10 गुनी चोट इसके दिल में लगी है पीटने से। आज मेरे को हाथ उठाना पड़ा, आज मेरे को ऐसा होना पड़ा, आज मेरे को ऐसा होना पड़ा। क्यों क्यों कोमल सिंह जी, होता कि नहीं होता? तो ये देश नहीं है, ये राग है। तो वो डांक से रहित, डांक को निकाले बिना, और डांक से रहित है ये स्फटिक मणि, और उसका स्वाद ये सारा जगत देख ले रहे, और जगत मान ले रहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो समझ लेना कि तुमने स्फटिक का स्वरूप जनता को समझा दिया। हम निकाल के समझा देंगे, फिर तुम क्या समझा दोगे? तो मूर्ख से मूर्ख समझा देगा। छेड़े पे निकाल निकाल के बता दो ना, फिर भाषण देने की क्या जरूरत है पादनी जी? फिर तो बिना भाषण के ही समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहां निकालने की सुविधा नहीं है, इसलिए भाषण ही से समझाना पड़ेगा। क्योंकि जब डांक निकलेगी तब मोक्ष होगा, तब निकलेगी ना। और वो कहते वो कब निकलेगी चिमन भाई? कि जब पहले तू मानेगा कि इसका स्वभाव जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वो दिख रहा है वो झूठा है, और जैसा नहीं दिख रहा है वो सच्चा है। और अकेला भाषा से मानने से काम नहीं चलेगा, तेरे अनुभव ज्ञान में वैसा दिखना चाहिए। अनुभव कितना कठिन हो आप समझ लो। आप मैं अच्छी तरह देखता हूँ, लाओ मेरे को जरा, मैं लाओ, हम यहाँ से दिखा रहे थे, जयतन लाल जी कहते लाओ मुझे दिखाओ मैं देखूं। अरे पास में लेके क्या करेगा, पास में जाके देखना तो इस आंख से तो रंग बिरंगे ही रंग दिखेंगे। क्या करें कांति भाई, कांति कुमार जी क्या करें? आंखें बंद करके देख। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो स्फटिक है ये रंग बिरंगा नहीं है, ये बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है। ये देश देख रहा हूं ना कि नहीं? नहीं आंखें बंद करके देख, चश्मा उतार के रख दे। कैसा आदमी है आंखें बंद करके देखूं? अरे आंखें बंद करके क्या दिखाई देगा? तो ये विचित्र व्यवहार से तो ये अनेक रंग वाला है, ये तो आंखें खोल के दिखाई देता है, वो तो निश्चय से इसमें कोई रंग नहीं है, ये आंखें बंद करके दिखाई देगा। क्योंकि जो जो आंखें गड़ा गड़ा के देखेगा तो और अधिक रंग वाला दिखाई देगा वो, क्योंकि पर्याय में वास्तव में रंग वाला है। तो तुम हम भी निर्मल कैसे देखूं? वो तो पर्याय को बात करके देखना है, वो तो उनमें जो डांक लगी है उसको बात करके देखना है। तो डांक माने द्रव्य कर्म, और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, और उससे सारा स्फटिक जो लाल दिख रहा है उसका नाम भाव कर्म। क्या क्या समझना है बलू भाई? उसके निमित्त से जो निर्मल अंश है वो भी उस रंग का दिख रहा है ना, वो उस रंग का हुआ नहीं है, क्योंकि निकालते ही तो फिर वो निर्मल हो जाता है। वो जब वो दिख रहा है वो तब भी लाल पीला नीला नहीं है, सफेद ही है कि नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा जब रागी द्वेषी दिख रहा है उस समय भी वो रागी द्वेषी नहीं है, निर्मल ही है। इसलिए इस त्रिकाली ध्रुव को समझाने के लिए इस स्फटिक मणि का उदाहरण दिया जाता है। हजारो बाबू जी अभी आप धैर्य रखो, बाबूजी जो समझता लाए हैं वो अभी आपको, अभी बाद में जब प्रश्न खत्म हो जाएगा तो वे अपने मुख से आपको सुनाएंगे। इसलिए मैं आपको, क्योंकि फिर नहीं तो बाबूजी यहां से घर तक पहुंचेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, सब जने पूछेंगे, इसलिए वे एक साथ ही सबको सुना देंगे। लेकिन मैं आपकी उत्सुकता ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए इतना बता देता हूं कि 1-2 दिन में इबल जी साहब आएंगे। मतलब मैं निष्कर्ष में आपको बता देता हूं, और डिटेल सब वो बता देंगे, और चिंता जैसी कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य कोई ऐसा खराब नहीं है, वहां भी प्रवचन चालू है, ख्याल में है ना? डॉक्टर ने मना किया है ना, लेकिन बाबूजी के जाने से उन्होंने आने का नक्की किया है। वो डिटेल बाबूजी बाद में सुना देंगे, है ना। अभी आपका उपयोग डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैंने बोला। अपनी कहां बात चलती है, इस फटेक पे चलो लौट के पढ़ते हैं। अभी दोबारा पढ़ो, अब देखो जैसे इस फटेक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है। अब मैंने जो समझाया उसके हिसाब से समझ में आ रहा ना। इस फटिक का निज श्वेत निर्मल स्वभाव, निर्मल भाव स्वभाव। अब श्वेत और निर्मल ये लिखा, वास्तव में तो निर्मल है, वो श्वेत नहीं है, लेकिन वो श्वेत निर्मलता का प्रतीक है ना लोक में, इसलिए श्वेत निर्मल लिखा है। संस्कृत में क्या लिखा, संस्कृत तो इसमें होगी नहीं। हाँ, इस फटिक को पल देख लेना, निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अब देखो ये आत्मा तो घटित कर रहे, अज्ञानी को कर्म की उपाधि, तो कर्म की जगह तो वे हो गए ना जो डांक लगाते हैं, उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो। ये आच्छादित होना माने भाव कर्म राग देश में हो गया ख्याल में ना, आच्छादित हो रहा है इसलिए वो शुद्ध स्वभाव दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। अब इस फटिक लाल पीला नीला, लाल इस फटिक पीला इस फटिक नीला इस फटिक, ऐसा मंत क्या हो गया ना। पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़। दो दादा ना बार बार हैं अपने यहां, लेकिन एक दफे से दो दफे लिखते हैं उसको दो दफे नहीं बोलते हैं। जैसे अपने लगा बार और फिर द्वारा दो लिख देते हैं ना उसके आगे, तो उसका अर्थ बार बार होता है ना, तो बार बार माने दो बार होता है कि अनेक बार, लिखते तो दो हैं। आपने समझना, लिखने में हिंदी में ऐसी पद्धति है कि नहीं है, अपनी अपनी, तो अपनी लिख के तो दो लिख देते हैं, लेकिन उसका अर्थ बार बार, बार बार का मतलब दो बार नहीं होता, लिखा तो दो बार है, एक बार बार फिर बार, लेकिन उसका अर्थ होता है अनेक बार, बारंबार बारंबार अर्थ होता है। बोले ना छोड़ माने दो दफे नहीं, छोड़। समझे ना, ऐसा दिन में लगा है छोड़। हे दुरात्मन, हे आत्मघाती, सभ्यता से बोलो, कि पशुओं जैसे घास और अनाज को खाने के व्यवहार को अब तो छोड़। एक होती प्रवृत्ति है, सबको मिक्सर मिला के खाता है, चटनी अलग खा उसका मजा आएगा, तू सब इकट्ठा लिया घुल मिल करके और खा गया, उसमें चाय का मजा। जवाहरलाल जी, मैं रेल में बैठा जाता था, सही घटना बताता हूँ, बहुत मार्मिक है। एक हरिद्वार का एक संत था, मतलब जैन नहीं अजैन, तो वहीं उनके सेठ जी मेठ जी भी थे जो उनके साथ में, वो अलग बैठे थे और जो हमारे सामने बैठे थे एसी में थे ना सर, तो वो बैठा, तो वो शाम को खाना खाने बैठे, तो वो संत आया, खाने को उसे बुलाया, तो उन्होंने उसे पूरी साग चटनी फटनी सब चीजें रखी थी उनके पास बढ़िया बढ़िया, तो उसने एक कटोरा लाया था, वो तो कहा इसमें डालो, तो पूरी किसमें डाल दोगे, चावल किसमें डाल दोगे, दाल किसमें डाल दोगे, वो सब चीजें उसमें इकट्ठी, उसने चटनी फटनी जो भी तुम्हें डालना हो, मिर्ची जो भी डालना हो वो सब उसमें डलवा दो इकट्ठी, और फिर कहा दो गिलास पानी दो, और दो गिलास ठंडा पानी उसमें डाल दो। इतने बड़ा कटोरा और उसमें मिला। मैंने पूछा महाराज जी, एक को प्रश्न पूछना है। मैंने थोड़ा परिचय दिया कि मैं भी पंडित हूं, मैं भी शास्त्री हूं, इसलिए आप नाराज मत होना, लेकिन मेरे गुरु आपने इतनी बिजनेस से इन बहनों ने बनाया, ये चटनी बनाई, ये बढ़िया बढ़िया चीजें अलग अलग खाने की है, 10 प्रकार के साग बनाए, भिंडी का अलग स्वाद लो, उसका अलग लो, उसका अलग लो, अरे तुमने सब ऐसा गोलम हुआ कहे चलो एक ठीक है एक दफा चल गई फिर पानी काय को डाल दिया ऊपर से पानी बाद में पी लेते। तुमने कहा देखो साहब शास्त्री जी मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई है। अपन को बहुत समझने जैसी है कि क्या सिखाई है कि देखो ये गृहस्त तो अपने लिए भोजन बनाते हैं तो इनको बहुत बहुत प्रकार की रुचि है तो अलग अलग बनाएंगे और महाराज को देना है तो और उससे सौ गुना अच्छा बनाएंगे। अपने लिए बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छा बनाएंगे लेकिन अपन को तो पेट का खाड़ा भरना है स्वाद तो लेना नहीं है तो इसको एक तो ये मिलाने से स्वाद खत्म हो जाएगा सबका ख्याल में है ना। और दूसरे पूरा स्वाद खत्म नहीं होता है एक एक गिलास पानी डालने से सब खत्म हो जाएगा। वो नमक में जब ज्यादा होगा तो नमक का बैलेंस बिगड़ जाएगा सब चीजों का बैलेंस बिगड़ जाएगा और एकदम फीका हो जाएगा और मजा मिलू के अपने पेट का गड्ढा भरा। तो इसको बेस्वाद करने का तरकीब मेरे गुरु ने मुझे बताई है क्योंकि पेट का गड्ढा भरना है और उसमें सब तरह का चाहिए शरीर के को प्रॉपर डाइट जिसे आप बोलते वो चाहिए ना तो वो भी मिल जाए इसलिए चटनी भी खाना लेकिन चटनी का मजा खत्म करके चटनी खाना लेना सब और सबका मजा कर दे खत्म कर देना मिक्सर कर देना। तो उसके लिए तो यहां आप आचार्य कह रहे हैं कि अरे भाई सब आदमी तो मजेदार खाए एक चटनी खाए फिर एक खाए फिर एक खाए बेचारी माताओं बहनों ने इतनी मेहनत करी है बेकार को अलग अलग रांधती इकट्ठा डल के उसमें एक कुकर में छह डब्बा काय को रखती एक ही डब्बा में भर के सब उसमें डाल डूल के पका देती है खा लो क्यों उन्होंने इतनी मेहनत की है अलग अलग एक एक रोटी बेली है पापड़ बनाया पापड़ दिया तो पापड़ भी उसे चीर चार के डाल के ऊपर पानी डाल दिया अब पापड़ तो जरा सा नरम हो जाए ठंडी हवा बम्बई में तो पापड़ खाने का मजा ही नहीं है क्यों मुलायम हो जाता है ना अब उसे तो पानी डाल के मुलायम कर लिया तो पापड़ मत खाओ जब नहीं खाते हो कि क्या करें वो जो देगा खाऊंगा सब लेकिन उसको बेस्वाद करके खाऊंगा। तो यहां तो आचार्य कहते हैं कि पशुओं जैसा बेस्वाद करके खाना क्यों खाता है कैसा। अब हमको प्योर चीज खाने की आदत ही नहीं है ये ककड़ी खाने ना ककड़ी लोग नमक थोड़ी मिर्ची ना कितने कितने मसाले डालते हैं तो ककड़ी का क्या स्वाद है वो पता ही नहीं चले। मेरा नेत्र ऐसा है कोई प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूं कि मेरे को तो कोई चीज भी उसमें डाल दो आप तो मैं तो कहता हूं कूड़ा करकट क्यों डाल दिया ये शब्द ही मेरा यहां से निकलता मेरे को तो कुछ बिना बिल्कुल बिना नमक नहीं मिर्ची बिना कुछ बिना ही हल हर फल किसी फल में नहीं अलो बढ़िया बढ़िया लोग बना बनू करके वो दूध में मिला के क्या बोलते उसको कटोरे में रख के लाते हैं दस तरह के काट कूट के डाल देते हैं हाँ फ्रूट सेब फ्रूट सलाद नमलू क्या क्या नाम मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा देखो ये बिना काटे फाटे ये सीधा यहां रख दो केला को से बिल्कुल तो काटना हो तो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलाओ एक दूसरे में भी नहीं मिलाओ नमक मिर्च भी नहीं कुछ नहीं तुमको बहुत शौक हो तो अलग रख दो तो मालूम पड़ेगा हम ककड़ी खा रहे हैं ये मालूम पड़ेगा इस चीज का पता ही नहीं चलता कौन चीज क्या है। फिर तो यहां कह रहे कि तू पशुओं जैसा कि मिक्सर खाने का स्वाद कहां कहता है अरे आत्मा का अलग स्वाद ले राग का अलग ले कोई चिंता की बात नहीं राग को जान तो अलग तो मालूम पड़ेगा राग क्या चीज है देश क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है। अब सबका ये मिक्सर लेकर के अंदर में आत्मा रागी देशी मोही क्रोधी ज्ञानी सब मिला मिलू करके समय दृष्टि मित्र दृष्टि और ऐसा देखने की पशुओं जैसा व्यवहार क्यों करता है लिखा ना हाथी जैसा मिलाकर क्या लिखा जैसे परम अवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तीन सहित खा जाते हैं माना जितने मेहनत की है तो उसका अलग अलग उसका फिर जैसे क्या बोलते हैं वो तो होना चाहिए ना आजकल की भाषा में वो ध्यान नहीं आता मेरे को मतलब सुनता रहता हूँ ना डाइनिंग टेबल पे आपके सामने बैठता हूँ तो सुनता रहता हूँ हाँ चटनी बहुत बढ़िया बना ये बहुत बढ़िया बना ये बना ये बना ऐसा बोलते रहते कुछ न कुछ वही क्या खाना खाओ नहीं क्या क्या चक्कर आप समझते नहीं है तो इसे क्या करना चाहिए क्या बोलते क्या रिस्पॉन्स मुझे बताना चाहिए ना तो वो बताने की सभ्यता इतनी अधिक हो गई है कि उसको बुरा से बुरा लगे तो क्या चाय कितनी बढ़िया बनाई अच्छा लगे तो बोलना ही है उसको, लेकिन बुरी लगे तो भी कहते सभ्यता का तगादा है क्यों। हाँ शिष्टाचार में अंग्रेजी का कोई शब्द बोलते हैं डेडिकेट है। अब मेरे जैसा आदमी कि कभी जिंदगी में बोला ही नहीं होगा, सच बोलते अच्छा बनाया ये बनाया वो कहना है और तो कहते साहब अब आकर के उनको तो सुनने की इच्छा होती है, सब लोग बोलते हैं पंडित जी कैसा बना, अब ये कुछ बोला ठीक है था ही नहीं आता क्या है ना। तो ऐसा क्या ये इसको पशु जैसा खाने का उदाहरण दे रहे हैं। अरे उसका अलग अलग स्वाद का भेद विज्ञान कर, सात तत्वों को अलग तो रख भले आदमी, ये सातों तत्वों का मिक्सर स्वाद लेता है। ये, 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 वो उल्टा कह रहे हैं मतलब अलग अलग स्वाद ले, आप सबको जान ले उसका जान ले और भगवान आत्मा को प्योर जान। अब क्या उल्टी बात है, यहाँ तो थाली में माल अलग अलग रखा है और मिला के खाना है, यहाँ कह रहे सब मिला हुआ माल है और तुझे मिला हुआ खाना पड़ेगा, वो स्वाद अलग अलग ले। वो जैसा उसने किया था ना वो साधु ने मिला लिया था तो फिर वो उसे खाए और फिर कहे हमारी चटनी बहुत बढ़िया बनी, ये तुम्हें कहा चटनी बननी देखी, ये तो तुमने सब गुड़ गोबर तो कर दिया है। उसमें से वो चटनी का स्वाद अलग निकाल ले, क्योंकि राग द्वेष को अलग किया तो जा नहीं सकता है, देह को अलग किया जा नहीं सकता। अब ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि ऐसे अलग अलग में से भी अकेले भगवान आत्मा को अलग निकाल करके उसका स्वाद ले ले। देखो हे दुरात्मन, दुरात्मन माने दूर हो गया है आत्मा का अनुभव जिसको, दुर्लभ है आत्मा जिसको, दूर है आत्मा जिसको, यही दुरात्मन है ना। क्या छोटे छोटी तो कह रहे आत्मा जिसको दूर है जिससे, वो छोटा ही तो हो गया, और कैसे कहते हैं है? अरे ये शब्द नहीं है, महाशब्द है, ये सबसे बड़ी गाली है। मैंने बोला था जैन धर्म में दो ही गालियां होती हैं, एक मिथ्या दृष्टि और दूसरी अभव्य, एक छोटी गाली है और दूसरी बड़ी गाली है। मिथ्या दृष्टि माने जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, और अभव्य माने जो कभी सम्यक दृष्टि ना होगा, तो बड़ी गाली हो गई ना लंबे काल तक का, ये तो अभी नहीं है लेकिन कभी सुधर सकता है या नहीं, लेकिन जिसके कभी सुधरने के चांस नहीं हो उसे अभव्य बोलते हैं। हे दुरात्मन, ये अपने लिए लिखा है भैया, हर एक अपने पे घटित करना, इस बंदूक की नली को दूसरे की तरफ नहीं कहना, ये समझना मैं समझूंगा मेरे लिए लिखा है, आप समझोगे मेरे लिए लिखा है तो आत्म कल्याण होगा, हमें इनके लिए है वो उनके लिए है वो उनके लिए है ना। कोई भी बात जिनवाणी में आए वक्तव्य में आवे प्रवचन में तो उसे अपने माथे पर लेना, दूसरे के माथे पर टालने की कोशिश नहीं करना, नहीं तर उसका लाभ तेरे को प्राप्त। ये बात तो विनय बाबू जी से कही है, ये बात तो प्रिंसिपल साहब से कही है, उनका नाम भी लिया था बीच में। अरे मर जाएगा तेरे को कोई लाभ नहीं होगा, तेरा नाम लिया ही नहीं तेरे लिए तो कोई बात है ही नहीं ना, फिर काय को आया तूने सुना इतना क्यों। फिर गोडे प्रमाण तो विराम की बात है, बीच में विराम लेने के लिए थोड़ा सा समझ लेने के लिए ऐसा हो जाता है, कोई एक के लिए बात थोड़ी है। कदाचित ऐसा भी हो कि किसी एक के कारण विकल्प आया हो तो भी बात तो सार्वजनिक है ना, कि कोई समाचार आया जैसा फला व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है और उसकी वजह से गुरुदेव का चित्त आंदोलित हो गया और उन्होंने बैराग की चर्चा करी और उसका नाम लेकर के भी करी गया उसका है तो वो सब उसकी चर्चा है, वो तो बेचारा मर गया उसके लिए समझा रहे हैं क्यों। तो यदि वो विकल्प किसी एक के कारण भी आया हो, ऐसा भी हो कदाचित, तो भी उसे एक के माथे थोपकर बाकी को निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। दूसरे वैसा दोष अपने में हो तो निकालने की कोशिश करना, और नहीं हो तो समझ लेना कि इनको भ्रम हो गया है, हमें तो ऐसा दोष है ही नहीं, फिर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों तने बाबू? आचार्य देव को भी विकल्प तो किसी के भी लक्ष्य से आ सकता है, क्योंकि आचार्य देव जो थे अमृतचंद, तो उनके सामने कोई शिष्य रहा होगा तो उसकी वजह से ऐसा विकल्प आया होगा और इनमें लिख दिया। अब वो तो है ही नहीं, वो तो हे प्रभाकर भट्ट दस जगह लिखा, हे प्रभाकर भट्ट योगिंद्र देव ने लिखा ना, पहले हे दुरात्मन, ये तो प्रभाकर भट्ट के लिए किया है, तो दुरात्मन तो प्रभाकर भट्ट है, तू तो महात्मन है। क्यों? वो परिणति बता दी ना पहले ऊपर परिभाषा, कि जो अनेक रंग वाले डाक के लगे हुए स्फटिक को विचित्र रंग वाला मानता है वो सब दुरात्मन है। ऐसे ही आत्मा को देहाधिक से युक्त पर पदार्थों का कर्ता धरता ऐसा मानता है वे सब दुरात्मन है। क्यों? आज सुबह बता रहे थे ना जवाहरलाल जी कि भाई हमको नास्तिक कहते हैं, और वो कहते कि जो ईश्वर को न माने वे नास्तिक, लेकिन वास्तव में आस्तिक और नास्तिक जो शब्द है वो तो अस्थि से बना है दादा, आस्था से नहीं बना है जवाहरलाल जी, अस्थि से बना है, और अस्तित्व को जो स्वीकार करे उसका नाम है आस्तिक। तो जो अस्तित्व को नहीं मानता है वही वास्तव में नास्तिक है, शून्यवादी। अब ऐसा थोड़ी है वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने वे नास्तिक, उनने ऐसा अर्थ कर दिया। अपने जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं माने वो नास्तिक, क्योंकि वो ईश्वर नहीं दिखता और वो मानते नहीं, मानते तो लोग नहीं मानते तो वो नास्तिक कहते। हमें आत्मा नहीं दिखता और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो हमारे यहां वो नास्तिक हो गया। अपने ऐसा लिखा है पुण्य पाप, ऐसा पाप नहीं जी, आत्मा परमात्मा पुण्य पाप, कितने चार पांच बातें ली हैं। इनको जो नहीं मानता है वो नास्तिक, उसमें मैं आगे पुण्य पाप शब्द भी लिखा है, आत्मा भी लिखा है और पुण्य पाप भी लिखा है। पुण्य पाप में लग क्यों लिखा? उसका अर्थ हो गया आत्मा को नहीं मानता वो भी नास्तिक, और आश्रम को नहीं मानता वो भी नास्तिक, और दोनों को इकट्ठा मानता है वो भी नास्तिक। समझ रहे ना? अस्तित्व तो है ना, जिसकी सत्ता है वो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करे उसका नाम नास्तिक है। तो आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, पुद्गल की सत्ता है, कर्म की सत्ता है, आश्रम की सत्ता है, बंध की, मोक्ष की, सबकी सत्ता है अपने अपने में। कल में है ना, यहां तो ये है कि सबकी भिन्न भिन्न सत्ता है, उनको एक सत्ता मानता है, ये गड़बड़ है, उसके लिए दुरात्मन कहा है, क्योंकि वो आत्मा से दूर हो गया ना, इतने मिक्सर को आत्मा मान रहा है, तो सही आत्मा को आत्मा नहीं माना ना। हे दुरात्मन, हे आत्मघाती, हे आत्म पंसन, आत्मा को ठगने वाला। ऊपर पंसन शब्द है ना, आत्म पंसन मूल में है ना, उन्हें आत्मघात करने वाले ऐसा अनुवाद किया। ऐसे आत्म पंसन, पंसन में ठगिया होता है ना, मूल जो अनुवाद होता है ठगिया होता है, आत्मा को ठगने वाले, अपने को ठगने वाले, स्वयं को धोखा देने वाले, ऐसा अर्थ होता है इसका। ये भी ठीक है, आत्मा का घात, स्वयं को धोखा देगा तो आत्मा का घात ही होगा ना, है ना। आत्मघात शब्द भी एक जगह आता है, आत्मघाती, जैसे परम अविवेक पूर्वक हाथी खाने वाले हाथी आदि सुंदर पशु आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़, और जिसने समस्त संदेह विपर्य अनद बसाए दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को प्रकाशित करने वाले करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान में स्फुट। अब जो कोष तक कहां खत्म हुआ, ये खत्म किया ही नहीं कोष तक कहा, नहीं नहीं दूसरा प्रगट लगा रहे हैं, सर्वज्ञ ज्ञान को स्फुट प्रगट किए गए, यही खत्म है जी, दिए गए के बाद खत्म कर दो इसे, इसमें तो है ही नहीं, क्लोज हुआ ही नहीं। सर्व ज्ञान सर्वज्ञ के ज्ञान से स्फुट जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य है, वह पुद्गल द्रव्य के रूप कैसे हो गया, जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। भगवान की साक्षी की बात करी, जिसको अपन बोलते हैं ना कसम खाना, तो साक्षी है कि नैन कसम, ये कसम खाई है, इसको कसम खाने बोलते हैं, कहते यानी कि मैं जो बात कह रहा हूं वो नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में आई थी। नैन कसम द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी। मैं नैन कसम माने क्या, मैंने मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आई थी, उनने कही थी, वो मैं कह रहा हूं। तो ये भगवान है सर्वज्ञ क्या साक्षी दे रहे हैं, सर्वज्ञ की कसम खा रहे हैं, ख्याल में नहीं? क्या कहते सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो भगवान आत्मा इन सबसे भिन्न नजर आया है, और तू कहता है पुद्गल द्रव्य मेरा है, तो तेरा पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है जिससे तू कहता है कि ये मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ख्याल में है ना? कैसा मेरा है तो देखो, बराग मेरे रजिस्ट्री मेरे नाम है, लिखा पड़ी मेरे नाम है, और पक्की है, देखो तो गवर्नमेंट ऐसा कच्चा काम नहीं है, ये पक्की वाली बातें तो जब से बेईमानी शुरू हुई है तब से आई है। अभी इस जयपुर के बड़े मंदिर में जाके देखना छबड़ा जी, प्रिंसा साहब को तो मालूम होगा, ऐसे कागज हैं पाटनी जी के जिनमें ये लिखा है कि उसे 1000 रुपये दिए उधार और उसने कलम छू दी। क्या लिखा कोमल सिंह जी? कलम उसमें उसने दस्तखत नहीं किए, उसने साइन नहीं किए, अंगूठा नहीं लगाया, कलम छू दी। क्यों जवाहरलाल जी, तुम्हारे बाप दादों के यहां रखे कि नहीं रखे ऐसे कागज? रखे होंगे, देखना कि उसने कलम छू दी और उसके पोते से कहा कि देख ये लिखा है कि तेरे दादाजी ने कलम छू दी थी और तेरे माथे पर इतना कर्जा है। कोमल सिंह जी तो कहता हां साहब, खुद को बिकर के भी दूंगा। जब बेईमानियां शुरू हो गई कि क्या पता जे तुम्हें ने लिख लिया कलम छू दी, उनने नहीं छुई होगी कलम, तो दो गवाही लाए, अरे तुम देखो इसने कलम छुई है बाबूजी। फिर गवाही को उन्होंने पता लिया होगा तो अंगूठा का निशान लगवाना शुरू हुआ कि जांच करवा लो अंगूठा का निशान सही है कि नहीं, तो अंगूठा का निशान उसी का तुमने लगा लिया होगा तो वालों से कहे साइन करो, क्यों? और गवाहों के सामने करो साइन, प्रेंस कुमार जी कि गवाहों को तुमने पता लिया होगा तो चलो मजिस्ट्रेट के सामने साइन करो, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। तो मजिस्ट्रेट कहता है मेरे सामने साइन करना पड़ेंगे तो 25,000 रुपये लगेंगे, ये 25,000 का कर्जा तुम्हारे माथे मर गया बेईमानी की वजह से, यदि तुम्हारी जवान की कीमत होती, तुम्हारे दस्तखतों की कीमत होती तो ये प्रश्न कहां से खड़े होते। अब ऐसा आएगा कब फिल्म बनेगी, फोटो खींचे जाएंगे और वो सारा सब अभी होने लग गया तो जमाना बहुत तरक्की करेगा, मैं तो समझा यहीं तक आया था। शांति भाई, अरे ये तो ये हीरे वाले हैं, करोड़ों का व्यापार जबान पे होता है, लिख सकते हैं क्या? लेकिन तो इनकम टैक्स एल्टेस में सकते हैं, सभी अकेले नहीं, अब तो सब कोई कैसा विचित्र हो गया है, सुन ये बेईमानों में ईमानदारी आ गई है और ईमानदारों में बेईमानी आ गई है। जो दो नंबर का धंधा होता है ना वो बिना लिखा पढ़ी के होता है और उसमें कोई कुछ नहीं खाता है। सब बराबर सही लेन देन होता है ना, करोड़ों का जबान से हो जाता है। फोन पे भी मत कहना, एक पेटी बोलना। क्यों पेटी वाले जो खड़े हैं, एक पेटी बोलना नहीं बोलना, और पेटी के हिसाब से काम हो जाता है और वहां कहीं गड़बड़ नहीं होता है। और जो रजिस्ट्री और लिखा पढ़ी और स्वयं और पद करके बट इज द प्रूफ, ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं, ये कहां से आ गया है? ने? देखो तो ईमानदारी में बेईमानी और बेईमानी में ईमानदारी कहां है? क्या है? नैतिकता रही है कोई? आंख की शर्म नहीं है? समाज के सामने जाएंगे, देश के सामने जाएंगे, कोई कि हम क्या कह रहे हैं मुंह से जबानने का कोई ख्याल नहीं है? अरे सबसे बड़ी अदालत तो हमारी समाज है क्या? लेकिन होए आंख में तू नहीं होगा तो तेरी दादी होगी। मैम ने जैसी किससे तो बात तो सही थी लेकिन भाव बदल गया, ए हो गया है, डे हो गया है, वो हो गया है, ए हो गया है, लेकिन ए हो गया है इससे इसका क्या फर्क पड़ता है? जयंत कुमार इससे किसका क्या फर्क पड़ता है? किसी ने गड़बड़ कर लिया तो तुझे फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन उससे इसमें क्या फर्क पड़ता है? परिस्थितियां बदल गई, क्या बदल गई है परिस्थितियां? उसमें लिख देते परिस्थिति बदल जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। सतीश भाई क्या होता है? इन बहानों से कुछ नहीं होता है। अंदर में जाके झांक के देखना पड़ेगा तो बात करेगी कि भाई तूने मेरा जूठा पानी पिया है। महाराज मैं तुम्हारा जूठा पानी कैसे कर सकती हूँ? जहां से पानी बह के आ रहा है वो ऊंची जगह है, जहां आ रहा है वो नीची जगह है। बालचंद जी तो पानी जूठा कैसे होता था? जूठा तो मैं आपका पी रही हूं। नहीं नहीं अगली साल तुम ऊपर था मैं नीचे था। साहब मेरी तो उम्र ही 6 महीना है, अगली साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैंने अगली साल आपका पानी जूठा कैसे किया होगा? अरे तू नहीं तो तेरी अम्मा होगी। बदलने वालों को क्या है? जिनके दिमाग में नैतिकता नहीं है, कोई चीज नहीं है, उनको कोई है? सुगंध भाई ये आत्मा परमात्मा की बात कितनी ऊंची बात, किसके साथ कितना नीचा नैतिक स्तर। कहां आत्मा फलने वाला है, कहां आत्मा घुसने वाला है? वज्र का दीवाल तो चारों तरफ लग रही है, उस वज्र की दीवाल को तोड़े तो अंदर आत्मा की बात प्रवेश करे। भाई उसके लिए हृदय को थोड़ा निर्मल पवित्र बनाना पड़ेगा, तब आत्मा की बात अंदर में प्रवेश करेगी।
एक सूचना है, आज के रात्रि के प्रवचन डॉक्टर साहब के प्रवचन के बाद श्री नवीनचंद पाटनी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र प्रांत से पधारे हुए सभी भाई बहनों की एक मीटिंग है, और इसलिए इसके लिए आप श्री महावीर पाटिल से संपर्क करें, और जो मीटिंग होना है वो नवीनचंद जी पाटनी साहब की अध्यक्षता में होगी, इसलिए सभी ध्यान दें महाराष्ट्र प्रांत के सभी भाई बहन।
आज अभी प्रातः का